आयु आरव से मिलकर वापस आ चुकी थी और वो उसकी यादों में खोई हुई थी। जब भी वो उससे मिलकर आई थी तो आयु के दिमाग में एक ही बात चलती थी कि कब वो और आरव दोनों फिर से एक साथ आ पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ आयु के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर प्रिया और युवराज को गिल्ट फील हो रहा था। बहुत कम मौके आते थे जब आयु इस तरह से स्माइल करती थी, और वो भी तब होता था जब वो आरव से मिलकर आई थी। युवराज और प्रिया ने डिसाइड किया कि वो आयु की दूसरी शादी करवा देंगे। उसी के बारे में बात करने के लिए युवराज और प्रिया आयु के पास आ रहे थे। ऊपर के फ्लोर पर कदम बढ़ाते हुए अचानक प्रिया रुक गई और उसने युवराज से नामे सिर हिलाकर कहा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा युवराज। जब आरव ने अलग रहने का फैसला किया था तब हमें दिक्कत नहीं थी, उसके फ्लोर पर नहीं जाते थे, पर वो हमारे पास आ जाता था। पता नहीं वो कैसे कर लेती है उसके बिना वहां रहना, पर मुझे नहीं हो पाएगा। वहां आज भी उसका एहसास है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी प्रिया, तुम ऐसे रिएक्ट कर रही हो तो आयु को कैसे समझाएंगे? अभी तो हमें उसे मनाना भी होगा। उसकी हरकतें देखकर साफ है कि आज भी वो आरव के बिना आगे नहीं बढ़ पाई है, युवराज ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। आगे तो हम कोई नहीं बढ़ पाए हैं, पर उसकी उम्र ही अभी क्या है। आपके समझाने पर मुझे अब ये समझ आया है, लेकिन उसके नीचे आने पर हम उससे बात कर लेंगे ना, ऊपर जाने की क्या जरूरत है, प्रिया ने भारी आवाज में जवाब दिया। उसकी आंखें नम हो रही थीं। युवराज और प्रिया वहां सीढ़ियों पर खड़े बात कर रहे थे तभी आर्य घर आ गया था। आर्य भी अच्छे से जानता था कि युवराज और प्रिया ऊपर आरव के फ्लोर पर नहीं जाते थे। अब वो दोनों ऊपर जा रहे थे तो जरूर कोई बड़ी बात होगी, ये सोचकर आर्य घबरा गया। आर्य जल्दी से दौड़कर उनके पास गया और बोला, अंकल आंटी आप लोग ऊपर जा रहे हैं, आप लोग तो कभी ऊपर नहीं जाते हो, मॉम आ गई है क्या, वो ठीक तो है ना? आर्य की घबराहट को समझते हुए युवराज ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, आयु ठीक है, बस हमने ही उसे लेकर एक फैसला किया है। कैसा फैसला? और प्लीज आप मॉम से पूछे बिना कुछ भी डिसाइड मत कीजिए, आर्य ने थोड़ा एग्रेसिव होकर कहा। वो आयु को लेकर बहुत पजेसिव था। प्रिया ने उसका हाथ सहलाकर कहा, घबराओ मत, हमने कोई ऐसा वैसा फैसला नहीं लिया है और आयु की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होगा। युवराज ने आगे बताते हुए कहा, हम बस यही चाहते हैं कि आयु अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। कब तक वो अपनी जिंदगी आरव की याद में ऐसे ही बिता देगी? अच्छा हुआ तुम आ गए, अब तुम भी उसे समझाओ। ताकि युवराज की बात पूरी होने से पहले ही आर्य ने कहा, सॉरी टू से अंकल, मैं मेरी मॉम को किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करने वाला हूँ, खासकर किसी और से शादी करने के लिए तो बिल्कुल नहीं। वो डैड से बहुत प्यार करती है। हाँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जब वो बस उनकी बातें करती रहती है, उनको भूलकर आगे नहीं बढ़ना चाहती, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं जबरदस्ती उन्हें आगे बढ़ने पर मजबूर करूँ। आर्य की बातें सुनकर युवराज और प्रिया समझ गए थे कि आयु को मनाने से पहले उन्हें आर्य को मनाना होगा। आर्य आरव से कितना भी नाराज क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी जिंदगी में आरव की जगह किसी को नहीं दे सकता था, और ना ही वो चाहता था कि आयु अपनी जिंदगी में आरव की जगह किसी और को दे। युवराज ने गहरी सांस लेकर कहा, बैठकर बात करते हैं, पहले हमें आपस में इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। आर्य इस बारे में बात नहीं करना चाहता था, लेकिन वहीं युवराज की बहुत रिस्पेक्ट भी करता था। उनके समझाने पर आर्य युवराज के साथ नीचे गया। वहीं दूसरी तरफ आयु अभी भी कमरे में थी। वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में गई, तभी उसकी नज़र उसके कंधे पर गई जहां आरव की दिए लव बाइट का निशान था। थैंक यू सो मच आरव, मुझसे दूर जाने के बाद भी हमेशा मेरे पास रहने के लिए, आयु ने अपने मन में कहा। उसके दिमाग में 5 साल पुरानी यादें ताज़ा हो गई थीं जब आरव उसे छोड़कर चला गया था। आरव को गए हुए लगभग 1 महीने का टाइम बीत चुका था। इस 1 महीने में आयु आरव की तरह ऊपर के फ्लोर पर बंद रहने लगी। हालांकि कभी कभार आर्य उसके पास आ जाता था, लेकिन आयु उससे भी ठीक से बात नहीं करती थी। रात के लगभग 1 बज रहे थे जब आयु को नींद नहीं आ रही थी और वो आरव और पुराने फोटोज देख रही थी। हमेशा से नॉर्मल जिंदगी का सपना देखा था। अगर पहले पता होता कि तुम्हारे करीब आने पर मेरी बर्बादी लिखी है तो कभी मैं तुम्हें अनु का कातिल समझकर तुम्हारे पास नहीं आती। दोनों के बीच में इतने डिफरेंसेस थे, फिर भी आज यहाँ तक आ गए। क्या इसी दिन के लिए करीब आए थे कि एक दिन फिर से दूर होना पड़ेगा? आयु ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू लिए वो आरव को भूलने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। आयु को एक अननोन नंबर से कॉल आया था, लेकिन नंबर इंडिया का नहीं था। कॉल आने पर आयु के दिल में एक उम्मीद जागी। कॉल रिसीव किया। आयु के कॉल रिसीव करते हुए सामने से माहिरा की आवाज आई, आज पूरा 1 महीना हो गया है, उम्मीद है इस 1 महीने में तुमने ये एक्सेप्ट कर लिया होगा कि अब आरव कभी तुम्हारे पास नहीं आएगा। मैं तुम्हें बीतते हर वक्त के बाद कॉल करूंगी और ये एहसास दिलाऊंगी कि जो चीज़ मेरी थी वो मैंने वापस हासिल कर ली। माहिरा के कॉल का स्पीकर ऑन था और उसके सामने आरव खड़ा था। वो जानबूझकर आरव को टॉर्चर करने के लिए ये सब कर रही थी। कबीर भी वहीं पर खड़ा था। आरव ने गुस्से से अपने हाथ की मुट्ठियां बांध ली थी। माहिरा का ध्यान आरव के हाथों की तरफ था। उसने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें एक एडवाइस देती हूँ, उम्र बहुत कम है तुम्हारी, ठीक से पढ़ाई तक पूरी नहीं हुई है, अपना करियर बनाओ और एक अच्छा लड़का देखकर शादी कर लो। अरे बच्चे बच्चे पैदा करो, अपनी फैमिली आगे बढ़ाओ। माहिरा आरव के सामने ये सब इसलिए कह रही थी ताकि वो उसे ये एहसास दिला सके कि अब वो आयु के पास कभी नहीं जा सकता। वहीं उसकी बातें सुनकर आरव का खुद पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन सा हो रहा था। आयु सामने से कुछ बोल नहीं रही थी, वो अपना रोना कंट्रोल कर रही थी क्योंकि रोकर वो माहिरा के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। आयु ने गहरी सांस ली और खुद को सख्त करके कहा, कॉल करके मुझे यकीन दिलाना चाहती हो कि मेरा आरव कभी मेरे पास नहीं आ सकता, या फिर खुद को तसल्ली दिला रही हो कि तुम्हारी इन हरकतों के बावजूद भी तुम आरव को मुझसे प्यार करने से नहीं रोक पा रही हो। अपनी हद में रहो, माहिरा ने चिल्लाकर कहा। मैं अपनी हद में ही हूँ और कभी यहाँ से बाहर नहीं निकलूंगी, लेकिन हाँ वो एक दिन सारी हदें तोड़कर मेरे पास आएगा और उस दिन तुम देखती रह जाओगी। माहिरा लूथरा, आगे से मुझे कॉल मत करना, मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं पड़ा है कि एक महीने में ही मैं मूव ऑन करने लग जाऊं। मुझे नहीं पता कि मेरा ये इंतजार एक महीने का है, एक साल का, दस साल का या फिर जिंदगी भर का, पर मैं हमेशा मेरे आरव की मिसेस खुराना ही रहूंगी। आयु ने पूरी सख्ती से जवाब दिया और फिर कॉल कट कर दिया। माहिरा भी उसका एटीट्यूड देखकर हैरान थी, तो वहीं आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरव ने गहरी सांस ली और माहिरा की तरफ देखकर सिर हिलाकर कहा, थैंक यू सो मच माहिरा लूथरा बात करवाने के लिए। इस एक महीने में सच में मैं अपनी काबिलियत भूलकर कमजोरों की तरह बिहेव करने लगा था, पर हाँ मेरी मिसेस खुराना ने हमेशा की तरह मुझे स्ट्रांग ही बनाया है। कर लो जो तुमसे होता है, दूर करके भी दिलों से एक दूसरे के नाम नहीं मिटा पाओगी। इस डेस्टिनी ने हमारा साथ लिखा है और इस डेस्टिनी से ना हम जीत पाए हैं और ना ही तुम कभी जीत पाओगी। इतना कहकर आरव ऊपर चला गया था। माहिरा गुस्से में पैर पटकती रह गई, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं निकला।
आरव से बात हो जाने के बाद लगभग दो हफ्ते बाद आयु के पास कबीर का कॉल आया था और उसने उसके लिए दुबई के पास ही के एक शहर की टिकट बुक की थी। वो वहाँ पूरे डेढ़ महीने बाद आरव से मिल रही थी। जैसे ही आयु वहाँ पहुँची, उसने आरव को अपनी आँखों के सामने देखा तो वो दौड़कर उसके गले लग गई और रोने लगी। मुझे पता था कि तुम मुझे अपने पास बुलाना अरेंज कर लोगे, थैंक यू सो मच। माहिरा के सामने उस दिन मैंने बड़ी बड़ी बातें तो कर दी थी, लेकिन मेरा दिल जानता था कि मेरे लिए तुम्हारे बिना रहना कितना मुश्किल था, आयु ने आरव के गले लगे हुए कहा। उसने उसे कस कर पकड़ रखा था, मानो फिर कोई उसे आरव से अलग न कर दे। मुश्किल तो मेरे लिए भी बहुत है मिसेस खुराना, लेकिन मैंने पूरा प्लान बना लिया है, आरव ने जवाब दिया और फिर उसे अलग होकर कहा, हम ज़्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम्हें पूरी तरह मुझसे दूर जाने की इजाज़त ना तो पहले थी और ना ही अब होने वाली है। पूरे पाँच साल तीन महीने तुम्हें मुझसे अलग रहना होगा। जिस दिन ये इंतज़ार ख़त्म होगा, उस दिन तुम्हारा आरव फिर से तुम्हारे पास आएगा। तब तक तुम्हें खुद को स्ट्रांग रखना होगा। आयु ने उसकी बात पर हामी भरी। उस वक्त वो आरव के साथ पूरे दो दिनों तक रुकी थी, क्योंकि आरव एक बिजनेस ट्रिप के चलते उस जगह पर आया हुआ था। इतने सालों से आरव और आयु एक दूसरे से छुप कर मिल रहे थे और आयु हर दिन को नोट करती थी। पुरानी बातें याद आते ही आयु के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट थी। उसने एक डायरी निकाली और उसमें लिखते हुए आयु ने अपने मन में कहा, पाँच साल दो महीने बीत चुके हैं और एक महीने की बात है। वादा किया था तुमने मुझे, आना पड़ेगा तुम्हें मेरे पास, मेरे विश्वास को जिंदा रखने के लिए, हर हदों को तोड़कर। फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा।